अयांश पैंट की जेब में हाथ डाले अंदर आया। मेरा घर है और यहां कहीं भी जाने के लिए मुझे परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, एटीट्यूड वाले लहजे में।
रियली? अगर आपके इस घर के किसी बाथरूम में पहले से कोई और हो तब भी आप उसमें घुस सकते हैं क्या? ये कहे आरवी खुद ही हंस पड़ी।
आप बड़े कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आप नहीं जा सकते हैं मिस्टर मेहरा। ये सुन अयांश के चेहरे पर बड़ा एटीट्यूड था। वो थोड़ा ठंडा पड़ गया पर फिर तलखी से बोला,
ये जॉक था क्या जो ऐसे हंस रही हो?
आरवी हंसी रोकते हुए बोली, आपने की वो बकवास थी और मैंने किया वो जॉक। खैर आपको तो दोनों सिचुएशन पर हंसी नहीं आने वाली, सो कुछ भी कहने से पहले, अपनी रॉ बकर दिखाने से पहले सोच लीजिए। इतनी भी फेंकने की जरूरत नहीं है, घर आपका है पर इस घर की हर जगह आपका जाना नॉट पॉसिबल फॉर यू मिस्टर मेहरा, सोचना हाँ। तभी अयांश ने फिर अपने एटीट्यूड को बरकरार रखते हुए कहा, तुम्हारे करीब आना तो पॉसिबल है ना, और हक भी मेरा, तुम तो मेरी वाइफ हो, तुम्हारे पास आने के लिए तुमसे क्या पूछना, भौंयें उठाते हुए। ये सुन आरवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कुछ न कहना बेहतर समझा और अयांश और उसकी कही बात को इग्नोर करते हुए आईने की तरफ घूम गई और अपने माथे पर लगी बैंडेज निकालने लगी। अयांश पीछे खड़ा आईने से ही उसे ये सब करते देख रहा था। आरवी धीरे धीरे उसे निकाल रहा था और साथ साथ थोड़ा दर्द होने पर उसके मुंह से हिश-हिश करते हुए सिसकी भी निकल रही थी। तभी अयांश पीछे खड़ा बोला, डॉक्टर बनने जा रही थी और एक बैंडेज निकालने में इतना डर कि सिसकियां निकल रही हैं। आरवी आईने से ही अयांश को देखते हुए बोली, ये डर नहीं दर्द है, जो होना कोई बड़ी बात नहीं है, और डॉक्टर भी इंसान होते हैं मिस्टर मेहरा, पर आप जैसे पत्थर दिल बेदर्द क्या समझेंगे? सब आपके जैसे नहीं होते जिनको दूसरों को दर्द देकर भी कुछ फील ना हो। डॉक्टर को भी दर्द होता है, उनको भी लगी चोट पर तकलीफ होती है। डॉक्टर है इसका ये मतलब नहीं कि उनको चोट लग जाए तो फर्क ना पड़े, उफ तक ना निकले। खैर छोड़िए, आप तो डेविल हैं, आपकी समझ में कहाँ ये सब आना, हम जैसे आप नॉर्मल इंसान थोड़ी हैं, राइट? अयांश थोड़ा आगे आते हुए बोला, सही कहा, मुझे बिल्कुल फील नहीं होता, और तुमको दर्द तकलीफ में देखकर तो मुझे सुकून मिलता है, बड़ा मज़ा आता है जब तुम दर्द से कराहती हो। आरवी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, तो पा लीजिए सुकून, रोका किसने है? वैसे मैंने सुना था जो बुरा करते हैं उनके साथ बुरा होता है, सुकून छीनने वाले को सुकून नहीं मिलता, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। खैर आपका राज आपकी गंगा, खूब सुकून पाइए, क्या पता कौन सी घड़ी आपका ये सुकून छिन जाए। इतना कहे आरवी फिर बैंडेज निकालने में व्यस्त हो गई। अयांश वैसे ही खड़ा खामोशी से उसे देख रहा था। तभी आरवी को परेशान होते देख उससे रहा नहीं गया, उसने फट से आरवी को अपनी तरफ घुमा लिया। आरवी अयांश से दूर होते हुए बोली, क्या है अब? अयांश ने फिर उसे करीब खींचा और होठों पर उंगली रख घूरते हुए कहा, बिल्कुल चुप और हिलना मत। इतना कहे खुद ही माथे पर लगी बैंडेज निकालने लगा। अयांश नजरें ऊपर चढ़ाए उसकी तरफ देख रही थी, सच में खुद बैंडेज निकाल रही थी तो उसे दर्द हो रहा था, और अयांश जैसे धीरे धीरे निकाल रहा था आरवी को ज्यादा दर्द भी नहीं हो रहा था। तभी आरवी ने हल्की सी उफ की कि अयांश ने उसकी माथे की चोट पर फूंकना शुरू कर दिया। ये देख आरवी ने थूक निकला और आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी अयांश ने बैंडेज निकालकर ड्रेसिंग पर फेंकते हुए बोला, इतना भी मुश्किल नहीं था इसे निकालना जितना तुम बना रही थी, जितना ज्यादा टाइम लगाओगी दर्द उतना ज्यादा होगा, इतना भी नहीं पता, पकड़ो और निकालो, डॉक्टर्स इतना नहीं सोचते, चोट देखी दवा लगाई ड्रेसिंग की और काम खत्म, पर तुम जैसी कोई डॉक्टर जो खुद का इलाज करने में इतना टाइम लेती है, सोचकर ही ताजुब होता है कैसे पेशेंट का इलाज कर पाएगी। आरवी अभी भी अयांश को देखे जा रही थी, उसे कुछ ना बोलता पाकर अयांश ने उसे छोड़ते हुए कहा, क्या हुआ, सच कहा तो खामोशी पर उतर आई, वैसे सही बोला ना, तुम खुद की केयर करने में कच्ची हो, वर्तिका का ख्याल कैसे रख पाओगी। तभी अयांश ने अयांश का कोट पकड़ लिया और आंखों में झांकते हुए बोली, ये जो टुकड़ों में हमदर्दी दिखा जाते हैं आप, ये कहाँ से लाते हैं? जब बेदर्दी पर आते हो तो इसका एक अंश मात्र भी नहीं दिखाई पड़ता है, सवाल भरी निगाहों से देखते हुए। अयांश आरवी की कमर पर बाहें फंसाकर उसे अपने करीब करते हुए बोला, क्यों पसंद नहीं आती क्या मेरी हमदर्दी, या हमदर्दी देखकर बेदर्दी छोड़ दूं इसकी तमन्ना रखती हो? पसंद और तमन्ना दोनों ही आपसे नहीं जुड़ी है मेरी, बात यहाँ ताजुब की है, कैसे कोई शख्स इतना दोबला हो सकता है, तकलीफ देने पर आए तो पल भर में बेदर्द बन जाए पर तकलीफ में देखकर हमदर्द बनने चला आए। अयांश मुस्कराते हुए बोला, आई थिंक बेदर्दी से हमदर्दी रास नहीं आई, जान नहीं पाई हो ना मुझे, शायद जान भी ना पाओ, बार बार कहता हूं पर तुम हो कि भूल जाती हो, कभी देखा मुझे अपने दिए दर्द पर मलहम लगाते, ये चोट है ना माथे को हाथ से टच करते हुए, ये किसी और की दी हुई है जो मुझसे बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं, अब जो मेरी है मेरे अलावा मुझे उस पर ना किसी का साया मंजूर और ना ही दिया हुआ किसी का घाव, एंड यू आर ओनली माइन, जो होगा सब मेरा होगा। इतना कहे अयांश जानबूझकर आरवी के करीब जाने लगा कि आरवी ने अलांश की बात सुन और ये हरकत देख दांत पीस लिए और अयांश को खुद से दूर धकेलते हुए गुस्से से बोली, आपसे और उम्मीद भी की जा सकती है, दूर रहिए मुझसे, उंगली दिखाते हुए। तभी अयांश ने कलाई पकड़ आरवी को घुमा दिया और पीछे से गले लगते हुए चेहरा आरवी के कंधे पर टिकाकर कान के पास फुसफुसाते हुए बोला, अब उम्मीद रखो या ख्वाहिश, सब मुझसे रखो जान। आरवी अयांश की बाहों से छूटने के लिए छटपटाई, पर अयांश ने उसे जकड़ा रखा और बोला, कितनी बार कहा मुझसे दूर जाने की या मुझसे छूटने की कोशिश मत किया करो, तड़प कर रह जाओगी, कुछ हासिल नहीं होगा, माई वाइफ। ये सुन आरवी ने अपनी आंखें बूंद ली, पर फिर आंखें खोल अयांश की तरफ आईने से ही घूरते हुए बोली, आप जो चाहे वो बेशक आपको होता होगा हासिल मिस्टर मेहरा, पर मैं हासिल हो जाऊं आपको ये दिन कभी नहीं आएगा। आपकी जबरदस्ती और मेरी मजबूरी, तभी हम साथ हैं। थोड़ा सब्र रखिए, आपको भी आपकी औकात नजर आ जाएगी। पैसे वाले होंगे आप, पर इतने भी नहीं कि मेरा गुरूर खरीद पाए। आपकी सोच कितनी घटिया है ये जल्द आपको पता चलेगा, और साथ ये भी कि आप सब पर अपनी घटिया सोच नहीं थोप सकते हैं। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, तो सबको ये हक है। दांत पीसते हुए आरवी की ये बातें सुन अयांश का पारा चढ़ गया। उसने आरवी की बाहों को कसकर पकड़ा और गुस्साते हुए बोला, मुझे मेरी औकात दिखाओगी तुम मुझे? पहले खुद को देखो और खुद की औकात को। लायक भी क्या औकात दिखाने के? ये जो तुम बड़ी बड़ी बातें करके जो धमकियां देती हो ना, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, सो लिसन, मैं करने दूंगी तब करोगी ना। और रही बात तुमको हासिल करने की, तुम मुझे हासिल ही हो, अपनी मर्जी से लाया हूं मैं तुम्हें, और मेरी मर्जी के बिना हिल कर देख लो यहां से। तंज भरी मुस्कान होठों पर बिखरते हुए
आरवी अयांश की पकड़ से छूट नहीं पा रही थी और ये भी जान चुकी थी कि अयांश बहुत जिद्दी है, करने पर आए तो किसी की ना सुने, करके ही रहता है जो कहता है। इसलिए अयांश से छूटना और इस घर से जाना आरवी के लिए बेहद मुश्किल होने वाला था। बेशक वो अपने सच की लड़ाई लड़ रही थी, खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रही थी, पर ये बात भी सच थी कि अयांश खुद की हार कभी नहीं होने देगा। उसकी ईगो बहुत बड़ी है, जिसके चलते आरवी उससे खुद को शायद कभी बचा भी ना पाए, अयांश से जीत भी ना पाए और अयांश जीतने भी ना दे, और शायद यहां से निकल भी ना पाए। ऐसी कई बातें थीं जिसमें कोई दोहराई नहीं थी कि ऐसा ना हो पाए, पर आरवी की हिम्मत अभी उसके साथ थी। उसका गुरूर चूं का त्यूं था, जो वो खुद को अयांश के आगे अभी झुकने नहीं दे सकती थी। फिलहाल उसकी कोशिश थी खुद पर लगे वर्तिका की हालत की जिम्मेदार वो है का छोटा इल्ज़ाम खुद के ऊपर से हटाना। दर्द को बर्दाश्त करने वाली आरवी से ये छोटा इल्ज़ाम बर्दाश्त ना हुआ, इसलिए वो ये सब कर रही थी। बाकी बाद में क्या करना है क्या होगा, ये उसने बाद पर ही छोड़ दिया था। अयांश की पकड़ से ना छूट पाने के कारण सिसकियां भरते हुए बोली, आप मेरी विवशता का फायदा उठा रहे हैं मिस्टर मेहरा। अयांश पकड़ और बनाते हुए बोला, नुकसान हो मुझे ऐसा मैं कोई काम करता ही नहीं। आपकी जितना लालची नहीं देखा मैंने, जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। या और तुम देख भी ना पाओगी, बस मुझे देखो, सी कितना हैंडसम हस्बैंड हूँ, गुड लुकिंग हूँ, देखो देखो तुम्हारा डेविल हस्बैंड कितना परफेक्ट है, अयांश ने खुद को आईने में देखते हुए कहा। वाकई में कितने परफेक्ट हैं आप, और मैं आपको देखने से पहले मर ना जाऊं, अंदर से क्रूर बाहर से लंगूर, आरवी गर्दन झटकाते हुए बोली। आरवी के हाथों फिर इंसल्ट होता देख अयांश तिलमिला उठा और उसने आरवी को अपनी तरफ घुमाया। क्या बोला तुमने? वही जो सुना आपने, आई थिंक सुनने की प्रॉब्लम है आपको। मैंने कहा मैं हूं और आप लंगूर, आरवी पतीसी दिखाते हुए बोली क्रमशः।